नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 24 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता मोहन चरण मांझी आज शाम ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और न्यूयॉर्क में आज शाम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का सामना अमरीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता सम्मिलित हुए।
तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू को आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली आईटी पार्क में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उनके साथ जनसेना पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सदस्य सहित 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंत्रिपद में मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें जनसेना पार्टी प्रमुख के पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टी महासचिव नारा लोकेश और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्य कुमार यादव शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सड़क परिवहन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी, कोयला और खनन मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी चिराग पासवान, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एस पनीरसेल्वम और चिरंजीवी तथा रजनीकांत जैसे फिल्मी सितारे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के राजनयिक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नायडू को मुख्यमंत्री पद संभालने पर बधाई दी। वर्ष 2014 में विभाजन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायडू का ये दूसरा कार्यकाल है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
ओडिशा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:55 पर भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। श्री मांझी 2 उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा तथा कई अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सरकार बना रही है।
उड़ीसा के भावी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सुबह से ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और भुवनेश्वर में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं और उनकी सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
ट्राइबल क्षेत्र से आया हूं, ट्राइबल लोगों का तक काम जरूर करूंगा। उनके साथ साथ जो दारिद्र सीमा रेखा के नीचे बीपीएल फैमिली जो लोग हैं और उनका इलाका में सारी काम पड़े हुए हैं। पार्टी का विचारधारा को लेते हुए और संकल्प पत्र में जो भी गरीब लोगों के लिए काम दिए हैं, जैसे सुभद्रा योजना और जैसे किसानों के लिए जो एमएसपी बढ़ाने के लिए, उनके साथ साथ ओल्ड एज पेंशन हो, आदिवासी का विकास हो, कि उड़ीसा में कैसे 5 सालों में आगामी 50 साल के लिए काम अच्छा ढंग से होगा।
उन्होंने बीजद सुप्रीमो और निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया तथा उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। श्री मांझी को आज शाम राज्यपाल रघुवर दास भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आज दोपहर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, जबकि भाजपा शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के भी समारोह में शामिल होने के लिए किसी भी समय भुवनेश्वर पहुंचने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जनता मैदान के आसपास की सड़कों पर आज दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया है। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल का 24 वर्ष लंबा शासन समाप्त हो जाएगा। 52 वर्षीय मांझी को कल शाम केंद्रीय भाजपा प्रवेशकों, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री और राज्यमंत्री आज भी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री के रूप में फिर से अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर श्री गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। श्री अजय टम्टा और श्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री रिजिजू ने कहा कि जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र इस महीने की 20 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू होगा। संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष अप्पावू ने कहा कि यह सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। पहले विधानसभा का सत्र 24 तारीख से शुरू होना था। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये वृद्धि घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए विकास पूर्वानुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछी जाने वाली प्रश्नावली जारी की है। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों को देखते हुए ये प्रश्नावली जारी की गई है। परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कृपांकों के कारण 2 परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल 1563 परीक्षार्थियों को उनके समय की हानि की भरपाई के लिए कोई कृपांक नहीं दिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से अधिक परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के कठुआ और डोडा जिलों में आतंकवादियों के साथ कल रात 2 मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 1 जवान शहीद हो गया और 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। डोडा जिले में भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर एक संयुक्त जांच चौकी पर आतंकवादी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी SPO घायल हो गया। कठुआ जिले के हीरानगर में छिपे एक आतंकवादी द्वारा गोलीबारी में CRPF का 1 जवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी मारा गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में शिवखोरी तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों की कई टीमों ने मंगलवार को लगातार 3रे दिन रियासी और राजौरी जिलों के घने जंगलों में तलाशी अभियान जारी रखा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हमले में 7 तीर्थयात्रियों, बस चालक और कंडक्टर सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी और 43 तीर्थयात्री घायल हो गए थे। इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के थे। हमले के बाद बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया और कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित 8 सदस्यों की मौत हो गई है। ये दुखद घटना जिले के मल्लामा क्षेत्र में आज तड़के कानपुर से हरदोई जा रहे एक रेत से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी पर पलट जाने से हुई। सड़क के किनारे बनी झोपड़ी नट समुदाय के सदस्यों की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से परिवार की हर संभव सहायता करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब T20 क्रिकेट विश्व कप की खबरें।
ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमरीका से होगा। ये मैच न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम अपने अपने दोनों मैच जीत चुकी हैं। भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को और अमरीका ने कनाडा और पाकिस्तान को हराया था। भारत ग्रुप में पहले और अमरीका दूसरे स्थान पर है। आज ही एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से होगा। इससे पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 107 रन का लक्ष्य 17 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इस बीच नेपाल और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला ग्रुप डी का मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। इससे श्रीलंका की सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं और नेपाल के क्वालिफाई करने पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोनों टीम अब तक प्रतियोगिता में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका ने शीर्ष पर बने रहते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम ग्रुप मुकाबले में 17 जून को श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
रण है, रण है, रण है, ये रण है। बांग्लादेश में ईद उल अदहा के अवसर पर एक सप्ताह के अवकाश के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हिल लैंड पोर्ट आयात निर्यात समूह के महासचिव ने कहा कि हिल लैंड पोर्ट के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक गतिविधियां 14 से 21 जून के बीच ईद अवकाश के लिए बंद रहेंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली 3 अंतर्देशीय ट्रेनें ढाका से कोलकाता जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस और खुलना से कोलकाता जाने वाली बंधन एक्सप्रेस ईद अवकाश के दौरान नहीं चलेंगी। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जिनामणि ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है।
जो अपडेट है यही है कि जो पहले हीट वेव का है, जो उष्ण लहर, अति उष्ण लहर है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह में प्रिवेल हो रहा है। उसी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उत्तरी भाग है, वहाँ भी हीट वेव डेवलप हो चुका है। मानसून का अगर बात करें, मानसून भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में, और बारिश भी चालू है। लेकिन हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग आज और कल है कोंकण कोस्ट और केरला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को देखते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वृक्षासन योग के लाभ के साथ एक वीडियो साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि वृक्षासन या वृक्ष मुद्रा के संतुलन और मुद्रा को बेहतर बनाने में सहायता सहित कई लाभ हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 24 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता मोहन चरण मांझी आज शाम ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत अगले 3 वित्त वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और न्यूयॉर्क में आज शाम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का सामना अमरीका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।